y tenía todos los papás con él. ¿100 crores
तो जब बाबा जीवित थे तभी बोला था. अभी तो क्रिश्चियंस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. दुनिया में सबसे ज्यादा जनरेशन क्रिश्चियंस की हो चुकी है. ऐसे कहो 100 करोड़. तो वो भी लिमिट है. ₹500 करोड़, ₹600 करोड़, ₹700 करोड़, ₹750 करोड़ भी बोला है. मनुष्य आत्माओं की संख्या उनमें जो लास्ट में आते हैं, एकदम लास्ट में, जब एक्सटेंसी पर संभाल करने वाला कोई भी धर्म टिका नहीं रहता, उस समय जो आत्माएं 100-150 करोड़ आती है वो तो एकदम नास्तिक किस्म की होती है, कीड़े मकोड़ों जैसी होती है, आती है और चली जाती है. क्राइस्ट के फॉलोअर्स क्रिश्चियंस जो 100 करोड़ से भी ऊपर हो जाते हैं वो तो फिर भी गनीमत. क्राइस्ट को धर्म पिता कहेंगे लेकिन आर्य समाज और उसके बाद धर्म पिता तो कहेंगे ही नहीं. वो तो छोटे छोटे मठपंथ हैं जिनके निश्चित कानून नहीं है. प्रजातंत्र की तरह आज कानून बनते हैं और कल बिगड़ जाते हैं. ये है ही प्रजापरस्तात्मय. बाप तो आकर के राजा ही स्थापन करता है, राजतंत्र की स्थापना करता है. तो ये है देहद का बाप. धर्म पिताएं तो फिर भी लिमिट में हैं. उनको लिमिटेड बाप कहेंगे, लिमिटेड जनरेशन का बाप. वो उन बापों का भी बाप है. माना जो भी 500 से लेकर के 700 750 करोड़ जनरेशन है, मनुष्य शक्ति है, ह्यूमैनिटी है, उन सब का बाप है. करता हो उसको मार सकते हैं. और जिन बच्चों की याद की स्टेज ही ऐसी बन जाए
कि प्रवेश करना और न करना बराबर हो जाए, जिन बच्चों की स्टेज ही ऐसी बीज रूप बन जाए कि बाप समान स्टेज निसंकल्पी बन जाए, तो उनको मारने करने की बात रहती है. प्रकृति का कोई भी ऐसा तक तो है जो उनको मार सके.
वो 4.5 लाख विशेष आत्माएं हैं इस शक्ति की, जो ऐसी बाप समान बीज रूप स्टेज में स्थिर हो जाती है कि प्रकृति के 5 तत्व भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते. दुनिया की सबसे पावरफुल ईश्वरीय रचना है प्रकृति, नेचर. नेचर के सामने किसी की नहीं चलती. अगर चलती है तो सिर्फ उन आत्माओं की चलती है जो बीज रूप स्टेज में टिकने वाली है. सारी मनुष्य सृष्टि के पूर्वज हैं. बाप समान सुप्रीम सोल की स्टेज में स्थित होने वाली आत्मा है। वो भले प्रजापति क्यों न हो, पहले जन्म की प्रजा की भी कोई विशेष ऐसी शिष्ट है जो बाप ने बोली है, बहुत प्रिय बात है। कौन सी आत्माएं मुझे विशेष प्रिय है? ज्ञानी तू आत्माएं मुझे विशेष प्रिय है। ऐसी 4.5 लाख आत्माएं जो राधा कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बच्चों को जन्म देने वाली है,
नई सृष्टि की शुरुआत करने वाली है, उनको दुनिया की कोई हस्ती नहीं जो मार सके। अमरनाथ के कैसे बच्चे हैं? अमर बच्चे हैं, उनको अमर भव का वरदान मिला हुआ है।
भक्ति मार्ग में तो यही कहते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से
विष्णु निकला। लेकिन बाबा ने कहा ये तो रंग बात है, है? शिव बाबा की नाभि से ब्रह्मा निकला, विष्णु निकला, ये कहना ठीक है। कैसे? कोई बताएगा? निकला का मतलब क्या हुआ? बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है तो कहते हैं पेट से निकला। निकला माना पहले गुप्त था, फिर प्रत्यक्ष हुआ तो कहते हैं निकला। वो तो स्थूल बात हो गई, लेकिन यहाँ तो बताया शिव बाबा, शिव बाप नहीं बताया इससे निकला ब्रह्मा। शिव बाबा की नाभि कमल से निकला ब्रह्मा। बाबा तो कहा जाता है साकार निराकार के मेल को, शिव बाबा तो जरूर साकार रूप में निराकारी स्टेज वाला कोई स्वरूप है शिव बाबा, जिसके लिए प्रत्यक्षता का टाइम कौन सा बताया? कोई निश्चित टाइम बताया ना बाबा ने? शिव बाबा की प्रत्यक्षता का टाइम कौन सा बताया? 76 माना 76 में कोई ब्राह्मण बच्चे हैं जिन्होंने शिव बाबा के प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचाना, माना संसार में वो प्रत्यक्ष हुआ माना निकला। कौन? शिव बाबा। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, बाप माना प्रजापिता, बाप माना सुप्रीम सोल शिव। प्रजापिता के शरीर में साकार में वो सुप्रीम सोल निकला माना प्रत्यक्ष हुआ, और उसकी नाभि कमल से, किसकी नाभि कमल से? शिव बाबा की नाभि कमल से। नाभि में क्या विशेषता होती है? नाभि में कोई विशेषता होती है? कहते हैं कि नाभि में शरीर की 16,000 नस नाड़ियां सब इकट्ठी होती है जाकर। 16,000 नसों नाड़ियों का, जिनमें आधी शुद्ध खून बहाने वाली और आधी नशिष्ट अशुद्ध संकल्पों का खून बहाने वाली चैतन्य नशे नाड़ियां। तो शिव बाबा की नाभि कमल में इकट्ठी होती है, और उस नाभि कमल से पहले कौन निकला? निकलते तो तीनों इकट्ठे ही हैं, लेकिन बच्चों के सामने नंबरवार प्रत्यक्ष होती है। नाम के आधार पर। तो पहले प्रत्यक्ष होता है ब्रह्मा, बड़ी माँ, जो सारी शक्ति की बड़ी माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली अब कौन है, कब की बात है, यज्ञ के आज की बात नहीं है। यज्ञ के आज में तो शिव बाबा नहीं कहेंगे, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी नहीं कहेंगे। उस समय तो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु परमधाम से नीचे अवतरित तो होता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं पड़ता है, तो शिव बाबा की बात ही नहीं। हाँ, वो तीन सोल्स को कैप्चर करता है अपना कार्य करने के लिए, जो बाद में संसार में ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो वो प्रत्यक्षता का टाइम अभी है अथवा नहीं है, अथवा दुनिया के लिए छोड़ दिया जाए। ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष है वो तीनों सोल अथवा नहीं है, एक आवाज से काम तो ही चलता है। ब्राह्मणों की दुनिया में छोड़ दो, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा में एडवांस जाने वाली, उन्हीं की बुद्धि में ब्रह्मा कौन है संसार में जिसके चित्र बनते हैं, विष्णु कौन है जिसकी मंदिर और मूर्तियां बनते हैं, और शंकर कौन है जिसकी मूर्तियां बनती हैं, मंदिर बनते हैं, डायन होता है, वो तीनों मूर्तियां प्रैक्टिकल साकार में पार्ट बजाने वाली इस समय कौन है। ये एडवांस पार्टी के जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बैठा है, अगर बैठा है तो कहेंगे कि उनको बाप का परिचय मिला है, क्योंकि त्रिमूर्ति शिव बाप गाया हुआ है। बाबा मुरली में बोलते हैं शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, त्रिमूर्ति शिव जयंती, एक मूर्ति नहीं, एक मूर्ति के द्वारा पाप प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, कितनी मूर्तियों के द्वारा, तीन मूर्तियां प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। ये तीन साकार मूर्तियां सारे संसार में बुलंद होनी चाहिए। ये तीन मूर्तियों का भारत का झंडा है, झंडे में जो तीन कपड़े हैं वो शरीर रूपी वस्त्र की यादगार है, वो तीन शरीर रूपी वस्त्र का त्रिमूर्ति झंडा सारे संसार में हम बच्चों को बुलंद करना है। बुलंद कब करेंगे, हमारी बुद्धि में पहले बुलंदी होगी कि बाहर की दुनिया में बुलंदी कर लेंगे, पहले हमारी बुद्धि में तो वो तीन मूर्तियां क्लियर होनी चाहिए। तो हाथ उठाइए, किसी किसी बुद्धि में वो तीन मूर्तियां, अगर नाम पूछे गए तो नाम सहित बताए सकते हैं, चलो समझाए नहीं सकते लेकिन बताए सकते हैं। आप बताओ कौन कौन को मालूम है तीन मूर्तियां कौन कौन सी है प्रैक्टिकल ब्राह्मणों के परिवार में साकार रूप में। बताओ ये कोर्स उठाया है, अब जब यही पता नहीं है कि वो बाप की तीन मूर्तियां कौन सी हैं ब्राह्मण परिवार में, तो एडवांस कोर्स क्या उठाया, जबकि बाबा ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 से डिक्लेयर किया हुआ है। शायद भाषा न समझने की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि सारी पार्टी बैठी हुई है दक्षिण भारत की। एक एक्सपर्ट बहन जो कन्नड़ और तेलुगु दोनों जानती हो वो यहाँ आकर के बैठी। तो अनुवाद करके लोगों से प्रश्न पूछे तो सही उत्तर का जवाब मिले। अच्छा तेलुगु, तेलुगु में एक्सपर्ट जो टीचर हो वो आकर के बैठे, क्योंकि मोस्टली तेलुगु तो जानते हैं सब। तो शिव बाप जिसकी प्रत्यक्षता का वर्ष 76 ही बताई दिया और अभी तो 25-24 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो त्रिमूर्ति शिव बाप उसकी तीन मूर्तियां ब्राह्मणों में प्रत्यक्ष होनी चाहिए ना। तो हाथ उठाना है कि वो तीन मूर्तियां ब्राह्मणों की दुनिया में साकार रूप में कौन कौन है, ये किसको किसको पता है, वो हाथ उठाओ।
त्रिमूर्ति चेतन्रे अंटार कदा, शिवबाप अंटार कदा, मैं 76 प्रत्यक्ष अनते త్రిమూర్తి తండ్రిలో ఉన్నటువంటి ముగ్గురు మూర్తులు ఎవరు వాళ్ళు ఎవరెవరో తెలిసిన వాళ్ళు చెయ్యండి. బ్రహ్మ విష్ణు సంఖ్యలు త్రిమూర్తుల్లో ముగ్గురు, బ్రహ్మ విష్ణు సంఖ్యలు ఎవరు?
ऐसे ही हाथ नहीं उठाए देना। तीनों मूर्तियों में से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है,
मुगुर मूर्ति मूर्ति पैर अनुसार,
इसलिए सोच समझ के हाथ उठाना। आज हाथ उठाइए तो एक बार हो तो बड़ी अजीब बात है, बहुत थोड़ी सी आत्माओं ने हाथ उठाए और इनमें भी अभी चेकिंग की जाए तो पता चले।
अच्छा
जी, बाबा ने तो अव्यक्त वाणी में गुलजार दादी के द्वारा 3 शीर्ष फिक्स कर दी अभी 1-2 वर्ष पहले ही। 3 शीर्ष फिक्स हो गई, उनका नाम बोला ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। 3 शीर्ष फिक्स हो गई माना तीनों मूर्तियां फिक्स हो चुकी हैं, नाम सहित नहीं बताया, क्योंकि शीर्ष जो होगी वो तो साकार नहीं होनी चाहिए, सूक्ष्म बदल में जो माला की शीर्ष फिक्स होगी वो साकार दुनिया में माला प्रत्यक्ष होनी है या सूक्ष्म बदल में प्रत्यक्ष होनी है? साकार दुनिया में ही प्रत्यक्ष होनी है। तो सुब्बा राव भाई बताएंगे। सुब्बा राव भाई बताएंगे सुब्बा राव भाई बताएंगे ये विशाखापट्टनम गीता पाठशाला में, विशाखापट्टनम में कई गीता पाठशालाएं हैं, उनमें से एक गीता पाठशाला में गीता माता और सुब्बा राव ये मुख्य टीचर हैं। तो ये बताएंगे कि ब्रह्मा की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति कौन सी है जिसे कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु की मूर्ति कौन सी है जो कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, नाम सहित बता दीजिए एक शब्द में, बस ज्यादा नहीं।
सपोर्ट करते हैं
आप। आज ब्रह्मा, आज ब्रह्मा इतना मतलब पहला
अच्छा। हाँ जी, पूना से जालंधर भाई है, वो जालंधर भाई आकर के बताएंगे। ये तो बड़ी भारी परीक्षा हो गई। ब्रह्मा तीन सी स्थित हुई है, उसमें ब्रह्मा बाप और जगदम्बा, अव्यक्तवाणी में ये तीन नाम इसी क्रम से बोले हैं। पहले कौन सा नाम? ब्रह्मा। दूसरा नाम बाप और तीसरा नाम जगदम्बा। क्योंकि पहले शुरुआत में सन 76 से बोलते थे दो सीट हुई, और मुरली में भी पहले उससे पहले ही बता दिया था कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 76 की ये वो 66 की ये वाणी है मुरली चली हुई ब्रह्मा के मुख से, उसमें 5000 वर्ष अगर कम किए जाए तो 1966 ही आता है, 5000 वर्ष पहले। लेकिन बोला है 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, 5000 वर्ष में से 10 वर्ष और कम किए जाए तो आता है 76। माना 76 में लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, ये साबित होता है। माने ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ब्राह्मण बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि संगमी भी लक्ष्मी नारायण डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले कौन है। लेकिन यहाँ लक्ष्मी नारायण तो शब्द दूसरा कर लिया, यहाँ बात हो रही है लक्ष्मी नारायण से भी पहले ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। तो ब्रह्मा के लिए पूना से जालंधर भाई बता रहे हैं, घबराओ मत, ब्रह्मा सो विष्णु, जो ब्रह्मा है तो क्या बनता है, विष्णु बनता है, विष्णु की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, मूर्ति माने साकार प्रैक्टिकल मूर्ति जो संसार में पूजी जाती है। ब्रह्मा तो संपन्न स्टेज में क्या बन जाता है? विष्णु। तो विष्णु का नाम बताया, विष्णु मूर्ति का नाम बताया जो साकार में बैलेंस का पार्ट बजाने वाली मूर्ति है। परिवर्तन शक्ति जिसका नाम बाबा ने दिया है, जो सारे ब्राह्मण परिवार को परिवर्तन करके रख देगी। एक है मन, दूसरी शक्ति है बुद्धि, और तीसरी शक्ति है संस्कार। तो मन और बुद्धि से भी कुछ होता नहीं है उतना, लेकिन मन बुद्धि को भी परिवर्तन करने वाली शक्ति कौन सी है विशेष, जो लास्ट में प्रत्यक्ष होती है और ड्रामा खलास हो जाता है, वो है परिवर्तन शक्ति, वैष्णवी शक्ति। उस वैष्णवी शक्ति के बारे में बताया है मुरली में, मक्खियों की एक रानी होती है। इस ब्राह्मण परिवार में भी मिठास पैदा करने वाली जो मक्खियां हैं, ऊंची स्टेज में उड़ने वाली जो मक्खियां हैं, यूनिटी प्योरिटी से स्थापन करने वाली जो मक्खियां हैं, उनकी एक रानी, वो रानी जब उड़ेगी, इशारा दिया मुरली में, तो सारा धार उड़ जाएगा। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में सारा धार उड़ जाएगा। अभी वो रानी सारे ब्राह्मण परिवार में प्रत्यक्ष नहीं हुई है, इसलिए बताने में इतना ज्यादा हीला हवाला एडवांस पार्टी में भी हो रहा है, लेकिन एडवांस कोर्स दिया ही इसलिए जाता है कि त्रिमूर्ति शिव बाप की पूरी प्रत्यक्षता हो जाए। कोर्स देने के बाद दूध भी अगर ये बुद्धि में नहीं बैठता है वो तीनों मूर्तियां कौन सी हैं, तो कोर्स ही बेकार हो जाता है। भले कोई भी चित्र समझाए, पांच पुराने चित्र ही क्यों न समझाए, लेकिन समझाने वाले की बुद्धि में लक्ष्य क्या होना चाहिए कि त्रिमूर्ति शिव बाप को हम समझने वाले की बुद्धि में कैसे प्रत्यक्ष करें। तो पहली मूर्ति का नाम बताया जनंदर भाई ने, वो ठीक बताया। क्यों? क्योंकि संपन्न की मूर्ति बनती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये मूर्ति काहे की बनती है, संपन्न स्टेज की, और विष्णु की मूर्ति तो बैलेंस रखने वाली है, न ज्यादा लवफुल और न ज्यादा लाहुल, बहुत ज्यादा लाहुल होगी तो भी सब मार देगी, सबका खेल खराब हो जाएगा, तो वो तो फिर बहुत सख्त धर्मराज का पार्ट हो जाता है, और बहुत लवफुल होगी तो भी आसुरी बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसलिए बैलेंस में रख करके चलने वाली मूर्ति है विष्णु, जिसके कारण सबका परिवर्तन होता है। तो वो वैष्णवी शक्ति का जो नाम बताया वो सबसे अंत में प्रत्यक्ष होती है सारे ब्राह्मण में, लेकिन बुद्धि रूपी क्षेत्र में तो प्रत्यक्ष हो सकती है, हो रही है। विजयमाला की हेड, और विजयमाला की हेड रुद्रमाला के मणकों में से नहीं है, वो तो ऐसी शक्ति है, उन शक्तियों के बीच में से है जिन शक्तियों ने भारतवर्ष में जन्म जन्मांतर राजाओं के बिल्कुल अपोजिट पार्ट बजाया। भारत के राजाएं अनेक रानियां रखने के कारण बहुत पतित होती रही, और रानियां राजाएं पतित होते रहे, विचारी बनते रहे, और रानियां रानियां पवित्र बनती रहेगी। रानियों ने जौहर कर दिए, लेकिन विदेशियों के अंदर में नहीं आई, उन्होंने अपने शरीर को खलास कर दिया। लेकिन भारतवर्ष की जो पवित्रता है उसको आंख नहीं आने दी। तो प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। प्योरिटी को परमात्मा बाप इतनी तरजीह देता है कि दूसरे किसी देश में नहीं आता। कहाँ आता है? भारत में ही बाप आता है। अगर कोई दूसरे देश में आ जाए तो वो शिव शक्तियों का हुजूर इकट्ठा ही नहीं होगा, वो औरों के कंट्रोल में चली जाएगी। और दुनिया में एकता स्थापन होने की बजाय अनेकता ही बनी रही, चाहे भगवान भी आ जाए तो भी नहीं हो सकता। ये भारत देश की वो शक्तियां ही हैं जो प्योरिटी का दरवाजा खोलती है। विदेशी शक्तियां, विदेशी नदियां, उनमें स्नान नहीं किया जाता, स्नान भारत की नदियों में किया जाता है। भारत की नदियों को ही पतित पावनी माना जाता है। तो पतित पावनी जो शक्तियां हैं अंत में प्रत्यक्ष होती है, जैसे वैष्णवी शक्ति को अंत में प्रत्यक्ष होना है, गंगा को भी अंत में प्रत्यक्ष होना है। तो बताया, तीन मूर्ति शिव, वो तीन मूर्ति शिव संसार में प्रत्यक्ष हम तब कर सकेंगे जब हमारी बुद्धि में, हम ब्राह्मणों की बुद्धि में निश्चयात्मक बुद्धि पक्की हो जाए, अच्छी तरह समझ में बैठ जाए। ये तीन मूर्तियां ही कैसे हैं परमात्मा शिव के साकार स्वरूप, जिनके द्वारा संसार में परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है। और दो मूर्तियां हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, वो तो बताया। ब्रह्मा के बाद अगला नंबर किसका रखा? बाप। तो बाप को तो सभी जानते हैं, दूसरे धर्म वाले भी जानते हैं, वो भी कह देंगे आदम, मुसलमान भी कह देंगे आदम, तो हम ब्राह्मण बच्चे भी जानते होंगे कि सारी मनुष्य शक्ति का यूनिटी का बाप कौन है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अब रही तीसरी मूर्ति जगदम्बा। अगर जगदम्बा का पता चल गया तो जगदम्बा को जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत पिता नहीं, साथ में रहने की बात तो यहाँ बेहद की है। बच्चों के साथ कोई जरूरी नहीं है कि शरीर से ही साथ रहा जाता है, इन आंखों से देखा जाता है तभी पहचाना जाता है, बुद्धियों से भी साथ होता है। तो जो जगदम्बा की तीसरी मूर्ति है, जिसके बारे में अव्यक्तवाणी में भी बीच में ससोपंज में बोला, पहले बोलते थे दो चीज फिक्स हैं, उसके अलावा कोई चीज फिक्स नहीं, फिर बीच में बोलने लगे कि दो तीन चीज फिक्स हैं, न दो बोली न फिक्स करके तीन बोली। क्या बोली? दो तीन चीज फिक्स हैं, माना पक्का नहीं बोला, दो तीन दोनों ही बोल दिया। फिर अभी एक दो वर्ष से ये बोलना शुरू किया अव्यक्तवाणी में, तीन शीर्ष फिक्स हो चुकी है। ब्रह्मा, बाप माना प्रजापिता और जगदम्बा। तो प्रजापिता या बाप जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो बाप ने जो पहली पहली रचना रखी अपना कार्य करने के लिए, प्रैक्टिकल साकार में कोई तो रचना होगी। इतना बड़ा ईश्वरीय कार्य है तो उस ईश्वरीय कार्य को करने के लिए एडवांस पार्टी की संभाल के लिए कोई तो ऐसी रचना रची होगी पहले पहले, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला 83 में 13 होना चाहिए। क्या मतलब?
83 में 13
हो गए। अरे इतनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां सरेंडर हो गए 83 से पहले? कोई भी 13 नहीं हुआ क्या?
नहीं।
क्यों?
अनबुद्धि से नहीं
है। मन बुद्धि से नहीं हुई?
प्रैक्टिकल में नहीं हुई।
प्रैक्टिकल में नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई।
प्रैक्टिकल में पूरा धारण करना है,
पूरा धारण करना है, पूरा ही धारण करना होगा तो विष्णु देव का प्रत्यक्ष हो जाएगा।
आपको नारायण जी को पूरा भटकना है?
नहीं नहीं, ये बात नहीं, सरेंडर होने की बात है। कोई साकार परमात्मा का साकार स्वरूप के सामने जो प्रजापिता एडम या आदम संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, उसके सामने तन से मन से धन से समय और संपर्क से संबंध से सभी प्रकार की बाधी प्रैक्टिकल में लगा करके कोई पहले पहले कोई ऐसी शक्ति समर्पित होती है उसकी बात है, और बाद में समर्पित होती है एडवांस पार्टी में, वो पहले समर्पित होती है। जिसे ये अव्यक्तवाणी में बोला है कि पंजाब की धरणी कन्यादान में आगे गई। क्या माना? पंजाबी फूल से कनेक्टेड है। जगदम्बा की ज्यादा पूजा कहाँ होती है? पंजाब में। वैसे भी देवियों के ज्यादा मंदिर किधर है? पंजाब की साइड में। तो बताया तीन मूर्तियां, ये तीन मूर्तियां हम ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में प्रत्यक्ष होंगी तो हम संसार में भी इनकी प्रत्यक्षता कर सकेंगे, झंडा बुलंद कर सकेंगे। कपड़े का झंडा नहीं, तो कपड़े का झंडा बुलंद करते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजय करके दिखला दे, कपड़े का झंडा विश्व विजय कराएगा? कपड़े का झंडा विश्व विजय नहीं कराएगा। ये शरीर रूपी कोई तीन कपड़े हैं, जब संगठित हो जाएंगे इनकी सिलाई हो जाए और इन तीनों की बुद्धिरूपी जोड़ी एक के हाथ में आ जाए तो संसार में ये झंडा बुलंद हो जाता है। यहां बात चल रही थी पहली मूर्ति की, ब्रह्मा की। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये तो शास्त्रों में भक्तों ने लिख दी है। लिखा किसने? भगवान ने लिखा या भक्तों ने लिखा? शास्त्रकारों ने लिखा? भक्तों ने लिखा। भक्तों को तो असली बात का पता नहीं, लेकिन बाबा ने बताया कि ये त्रिमूर्ति शिव तीनों मूर्तियां जो साकार में संसार के सामने पहले ब्राह्मणों के सामने प्रत्यक्ष होती है, ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर, वो तीनों मूर्तियों में से जो ब्रह्मा की मूर्ति है वो सबसे पहले प्रत्यक्ष होनी है सारे ब्राह्मणों के सामने संपन्न रूप में। संपन्न रूप में प्रत्यक्षता की बात कर रहे हैं, सिर्फ नाम रूप से प्रत्यक्ष होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। संपन्न रूप में प्रत्यक्षता जो होती है वो लास्ट जो लास्ट जाता है, सर्विस में भी फास्ट जाए, दिव्य गुणों में भी फास्ट जाए और बुद्धियों की लगन लगाने में भी फास्ट जाए, और थोड़े समय में ही सारे संसार के बीच में तहलका मचा दे और प्रत्यक्ष हो जाए, तब कहेंगे कमाल। ऐसी कमाल करने वाली मूर्ति है ब्रह्मा सो वैष्णवी शक्ति विष्णु। बल जब विष्णु कहा जाता है तो उसमें पांच आत्माएं हैं जो संगठित रूप से कार्य करती है, चार भुजाओं के रूप में और एक आत्मा उन भुजाओं को चलाने वाली के रूप में। लेकिन फिर भी उन पांच आत्माओं में से जो मुख्य है, जो बैलेंस में सर्वोपरि है, जिसके कारण प्रत्यक्षता इतनी क्षिप्र गति से हो जाती है, वो है विष्णु की मूर्ति। वो मैदान में प्रैक्टिकल स्टेज पर आकर के सबसे बाद में कार्य करती है। अपनी भारतीय परंपरा में तीन पंथ बहुत गाए हुए। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले कौन से कहे जाते हैं? नहीं, ब्रह्म समाधि। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले को ब्रह्म समाधि कहा भक्ति मार्ग में, और विष्णु को फॉलो करने वालों को वैष्णव संप्रदाय कहा है, और शिव को फॉलो करने वालों को शैव संप्रदाय कहा है। लेकिन इनमें सबसे जास्ती पवित्र और सबसे जास्ती धारणावान कौन माने जाते हैं? वैष्णव पंथी। तो ये विष्णु की मूर्ति वो ब्राह्मणों की दुनिया में अभी संगम युग की स्टेज पर जो एडवांस में आनी चाहिए वो आई नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष जरूर हो चुकी है। जिसे कहा जाता है ब्रह्मा सो विष्णु। तो बाबा ने बोला कि वो शिव की नाभि से निकलता है, शिव की नाभि से भी नहीं कहेंगे शिव बाबा की नाभि से। तीन मूर्तियां तो साकार में है ही, लेकिन इन तीन मूर्तियों में से भी जो शिव बाबा का रूप है उसकी नाभि से ब्रह्मा निकला। किसकी नाभि से निकला? शिव बाबा जब शब्द कहा जाता है तो साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार। उस साकार की नाभि कमल से, नाभि कमल माना जहाँ 16,000 नसे नारियां, 8,000 शुद्ध खून बहाने वाली और 8,000 अशुद्ध खून बहाने वाली, 16,108 की जो संख्या प्रसिद्ध है उनसे निकलती है। उनका जहाँ संगत रूप इकट्ठा हो जाता है नाभि कमल, वहां से ब्रह्मा की मूर्ति संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। शिव बाबा की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा निकला या विष्णु निकला? ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा कहा जाता है ब्रह्म ने बड़ी माँ माने माँ, सारे सृष्टि की बड़ी माँ, बड़ी से बड़ी माँ, सारी शक्ति उसे माने या न माने, क्योंकि स्वदेशी जो है भारतीय है वो तो देवी के रूप को, जगदम्बा के रूप को मानते हैं, और विदेशी मानते नहीं है, लेकिन वो भी किसी न किसी रूप में मानते हैं। वो मानते हैं नेचर के रूप में, नेचर प्रकृति, प्रकृति का रूप बहुत विकराल रूप में हो जाता है। जैसे जैसे मनुष्य की प्रकृति बदलती जाती है, प्रकृति भी अपना स्वभाव संस्कार बदलती जाती है। प्रकृति के आदि में मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य जो नर से नारायण जैसे बन जाते हैं, उनकी प्रकृति बहुत विशेष होती है। तो संघात प्रकृति का जो रूप है बहुत ही श्रेष्ठ सात्विक बन जाता है। मानवीय शक्ति को, दैवीय शक्ति को कोई काम नहीं करना पड़ता। सारा कार्य कौन करती है? सारा कार्य, सारी प्राप्ति मुहैया करने का कार्य प्रकृति करती है, नेचर करती है। और जब कलयुग के अंत में मनुष्य आत्माएं तामसी हो जाती है, एक दूसरे को सुख देने वाली, काटने वाली बन जाती है, भयंकर रूप धारण कर लेती है, हर मनुष्य आत्मा डरावना रूप धारण कर लेती है, सब एक दूसरे से डरने लग पड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा कर लेते हैं, धोखेबाज बन जाते हैं, तब प्रकृति भी भयंकर रूप धारण करती है। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी ये शूटिंग होती है। ये प्रकृति माता और प्रकृति पति, ये मात पिता का खेल है। संसार में इन दो की ड्रामाबाजी विशेष है। शिव बाबा की ड्रामाबाजी उतनी गाई हुई नहीं है, वैसे मुरली में बोला है। असली व्यास है जो सबसे जास्ती ड्रामाबाजी करता है, वो कौन है? प्रजापिता, माना शिव बाबा का साकार रूप। तो उसकी जो सहयोगिनी शक्ति है वो भी ड्रामाबाजी करने में सबसे आगे होनी चाहिए, इसलिए बोला है बेहद की भाषा में कि कर्नाटक जोन को जो टीचर मिला हुआ है, युगल प्रवृत्ति वाला, वो बहुत वंडरफुल टीचर मिला हुआ है। किसको? कर्नाटक को, कर्नाटक की सेवा में वंडरफुल युगल जोड़ी टीचर के रूप में मिली हुई है। तो बाबा जी तो बेहद की भाषा है कि दक्षिण भारत के ही कर्नाटक है। कर्नाटक माना जो नाटक करने में बहुत श्रेष्ठ है। तो सारे ही रुद्रमाला के मन के क्या हो गए? कर्नाटक बहुत अच्छे नाटकबाज हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं। उनकी सेवा में जो वंडरफुल युगल जोड़ी बनी हुई है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। वैसे वंडरफुल पार्ट किसका बताया बाबा ने? जो भी नाटक हो रहा है सचरुचि रंगमंच पर, ये विराट नाटक जिसकी शूटिंग हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, उसमें सबसे वंडरफुल पार्ट किसका बताया? है शंकर का पार्ट सबसे वंडरफुल बताया, जो तुम बच्चे भी समझ न सको क्या? तो जब शंकर जिसे जगत पिता कहा जाता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरु, तो जगत पिता उसका ही पार्ट वंडरफुल बताई दिया जो हम बच्चे भी नहीं समझ सकते। तो उसकी जो सहयोगिनी शक्ति होगी जगत माता, वो भी तो वंडरफुल होगी ना। तो प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाता है एडवांस में ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में, मम्मी कहाँ है? बाबा है तो मम्मी क्यों नहीं? ये प्रश्न चिन्ह का समाधान कोई की बुद्धि में नहीं हो पाता। आखिर ये माजरा क्या है? लेकिन बाबा ने तो सब कुछ बता ही दिया, कुछ रखा नहीं है बताने के लिए, बता दिया है पहले से। तीन मूर्तियां जो हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन तीन मूर्तियों में शंकर की मूर्ति ऐसे ही फालतू रखी हुई है। शंकर की जगह अगर किसको बैठाया होता है, जगदम्बा को बैठाया होता तो समझाने में बहुत सहज हो जाता। शंकर का पाठ क्या है? शंकर द्वारा विनाश। किसका विनाश? देवात्माओं का। देवात्माओं का नहीं, जो विचार फैलाने वाले हैं, रावण संप्रदाय है, आसुरी संप्रदाय है, उनका विनाश करना। तो ये वंडरफुल पार्ट के लिए बाबा शंकर को आगे नहीं रखते हैं। कौन कार्य करता है? ये संहार का कार्य शंकर करता है या संहार कारणी शक्तियां करती है? संहार कारणी शक्तियों को आगे रखा हुआ है। शंकर के लिए तो यूं ही कह दिया है। बाबा ने बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। माना वो हाथ पांव नाक आंख कान से सच रूपी रंगमंच पर कोई ऐसा पाठ नहीं बजाता जो देखने योग्य पकड़ने योग्य हो। क्या रंगमंच पर पाठ बजाया जाएगा तभी तो कहा जाएगा कि शंकर कुछ करता है रंगमंच पर। वो तो बुद्धियों की पावर से, बुद्धियों योग बल से विश्व की बात सही लेता। तो योग बल से विश्व की बात सही लेने वाले के लिए ये कहा जाएगा कि वो कोई रंगमंच पर अभिनय करता है। याद में बैठना तो कोई अभिनय नहीं है, कोई पाठ नहीं है, सिर्फ याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। तो इसलिए कह दिया शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। माना देखने योग्य कोई ऐसी बात नहीं है जिससे पहचाना जा सके कि शंकर कुछ करता है। सिर्फ बुद्धियों की पावर ऐसी है। कैसी पावर बताई? शंकर की प्रेरणा से क्या होता है? विनाश हो जाता है। तो प्रेरित कौन करता है? जो शक्तिवान होगा तो अपनी शक्ति से शक्तियों को, जो उसकी अपनी शक्तियां होंगी उनको प्रेरित ही तो करेगा ना। एक इशारा देगा, एक प्रेरणा देगा और कार्य संपन्न होगा। तो ये प्रेरणा देने का कार्य शंकर का है, बाकी वो कुछ करता धरता नहीं है। प्रेरणा स्वभावा नहीं देता है। क्या बाबा कहते हैं? मैं कोई प्रेरणा नहीं देता हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल में प्रवेश करके ज्ञान सुनाता हूँ। इसको प्रेरणा देना कहा जाएगा? नहीं। माना प्रेरणा देना शिव बाबा का काम नहीं है। जब दुनिया में विनाश का तांडव होगा तो हम ब्राह्मण बच्चे जिनमें से कोई यादव संप्रदाय के हेड होंगे, मुख्य मुख्य रुद्रमाला के खास मण के ऐसे, वो वैज्ञानिकों की बुद्धि में प्रवेश करके उनको प्रेरित कर देंगे और वो एटमिक एनर्जी का विस्फोट करना शुरू करेंगे। उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो विस्फोट करने के लिए निर्णय ले सके। वो अभी भी सब कंफ्यूज हुए पड़े हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे तैयार हो जाओ तो उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहले कौन तैयार हो जाए? विजयमाला के लिए बोला है। रुद्रमाला के जो वस्त्र है जिसे एडवांस पार्टी अभी बोला वो तो तैयार हुए पड़े। दोनों के संयोग से एडवांस और एडवाइजर पार्टी। एडवाइस किससे लेना चाहिए? पवित्र से एडवाइस लेना चाहिए या पवित्र से एडवाइस अर्थात मंत्रणा लेना चाहिए? पहले देवत जो द्वापर युग में राजाएं होते थे वो राजाएं भी अपना मंत्री बनाते थे, महामंत्री आमात्य बनाते थे ब्राह्मणों में से। ब्राह्मणों में से क्यों बनाते थे? क्योंकि ब्राह्मण पवित्र होते हैं, पवित्रता का विशेष पालन करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों में से चुनते थे कि हमको मंत्रणा दें, ये कार्य करें अथवा न करें। राजाएं द्वापर युग से मंत्री जरूर रखते थे। तो रुद्रमाला में सभी राजाएं ही राजाएं हैं। वो राजाएं तो हैं लेकिन जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं व्यभिचारी बनने के। वो बुद्धि का बैलेंस खराब कर देते हैं। इसलिए विजयमाला की वो पवित्र शक्तियों की जब बुद्धियों की पावर उनको मिले तो निर्णय सही होगा, सही मंत्रणा मिलती है। इसलिए उसका नाम रखा है विजयमाला का एडवाइजर पार्टी। अब व्यक्तवाणी में नाम क्या रखा है? एडवाइजर पार्टी, एडवाइज करने वाली। एडवांस पार्टी और एडवाइजर पार्टी। तो ये तीन मूर्तियों का सारा खेल है। उसमें से ब्रह्मा की मूर्ति पहले प्रत्यक्ष होती है बच्चों के सामने। नाम क्या दिया हुआ है? मुरली में भी बोला है। वास्तव में ब्रह्मा को जगदम्बा कहेंगे। कौन से ब्रह्मा को? दादा लेखराज ब्रह्मा को क्या कहेंगे? जगदम्बा माने ब्रह्मा की सोल। कोई ब्राह्मण भक्ति में प्रवेश करती है एडवांस पार्टी में तब ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ अर्थात जगदम्बा का पाठ अदा होता है। उस मूर्ति की पूजा होती है। जरूर जो पूजा होती है उसका आधार प्योरिटी होती है। उस माता ने जो प्योरिटी धारण की है वो प्योरिटी का रहस्य सब की समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो पूजी जाती है। कौन? जगदम्बा। देवताएं हो चाहे आसुरी बच्चे हो जैसे शंकर को सब मानते हैं वैसे जगदम्बा को भी सब मानते हैं। ब्राह्मण बच्चों की बात है, दुनिया की बात नहीं। तो शिव बाबा की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला पहले पहले। अभी वो ब्रह्मा जो भी ब्राह्मणों की जनरेशन है चाहे वो एडवांस पार्टी के हो चाहे बेसिक नॉलेज के हो उन सब के बीच में वो ब्रह्मा प्रत्यक्ष होने वाला। जो शिव बाबा की नाभि कमल से निकलते हैं। पहले शिव बाबा प्रत्यक्ष होता है, फिर जगदम्बा ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला है? अरे अभी तो नाम बताया, महाभारत में प्रसिद्ध नाम अभी तो बोला, द्रौपदियों की बात हो रही है। द्रौपदी नाम पड़ता ही है द्रौपदी, कैसा पद पाने वाली, जिसका पद ध्रुव है, निश्चित है, अटल है, कोई कितनी भी ग्लानी करे लेकिन वो अटल पद हिल नहीं सकता। नैया डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, ऐसी पावरफुल नैया है। खिलैया कौन है? स्वयं बाप खिलैया है। तुम सब द्रौपदियां हो, नंबर बात तो सब द्रौपदियां हैं ही, चाहे कन्याएं हो चाहे माताएं हो। क्योंकि बाबा तो कहते हैं कन्याओं को भी क्या बना देता हूँ, कन्याओं को माता बना देता हूँ और माताओं को कन्या बना देता हूँ। तो बाबा के कहने का तो मतलब सिर्फ इतना है कि माताएं जब पवित्रता को धारण करती है तो कन्या बन जाती। उन्होंने जीवन में अच्छी तरह समझा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, तो उनको छोड़ने में देर नहीं लगती। इसलिए बोला कि तुम सब द्रौपदियां हो, सब ध्रुवपदियां हो, तुम्हारा सबका पद ध्रुव है। फिर एक बारे में बोला तुम सब वीराएं हो, क्या हो? तुम सब वीराएं हो। मीरा ने भी क्या किया? मीरा ने विष पिया, अपनी स्वेच्छा से पिया या पिलाया गया? पिलाया गया। इसलिए यहाँ बोला कि कन्याएं पुकारती हैं, क्या पुकारती हैं? हाय शिव बाबा बचाओ। सीढ़ी का चित्र समझाते हैं तो बड़ी उमंग उल्लास से समझाते हैं कि ये बेसिक नाली में कोई ब्रह्मा कुमार है क्या? ये बेसिक नाली में कोई चूड़ीदार पैजामा और अटकन और टोपी लगाए हुए कोई ब्रह्मा कुमार है परम प्रसिद्ध, इसके लिए बाबा ने बोला अपने गलेवान में हाथ डाल करके बुद्धिमती नहीं देखेंगे कि हम क्या करते हैं संकल्पों से, वाचा से, कर्मणा से, कैसी कैसी बातें करते हैं आप अपने। ये प्रकृति माता का पोल्यूशन उन ब्राह्मणों की संगति भी दुनिया की भी बात नहीं है। ये 2500 वर्ष से अपनों के द्वारा पोल्यूशन होता चला आया, तो प्रकृति भी फिर विकराल रूप धारण करती है। धर्मराज का रूप बाप नहीं बजाता डायरेक्ट, बाप को प्यार का ही प्रसादन कहा जाता है। वो प्रकृति ही सांसों व्यक्त करती है, तब पुकारते हैं माँ माँ माँ, जो मुरली में बोला गया। अभी बाप कहते हैं तुम बच्चियां पुकारती हो, हाय जो बाबा बचाओ। तो शिव बाबा के जो डायरेक्ट बच्चे हैं उनके अंदर के दिल से आवाज निकलती है कि बचाओ, तो बाबा दिल की आवाज सुनता नहीं है क्या? सुनता है या नहीं सुनता है? सुनता तो है, लेकिन बाबा ने बोला है जब पूरी दुर्गति का ग्रहण लगता है तब मैं आता हूँ। क्या करता हूँ? चोटी से पकड़ करके खींचता हूँ। जब तुम सारे ही डूब जाते हो माया की दलदल में, तब चोटी से पकड़ करके खींचता हूँ। इसलिए तुम्हारा नाम क्या गाया हुआ है? कैसे ब्राह्मण? चोटी के ब्राह्मण, ब्राह्मण चोटी। ये ब्राह्मण चोटी बहुत प्रसिद्ध है। तेरे भाने सर्व का भला, अगर अपना अपना भला चाहते हैं, अकल्याण नहीं चाहते, अकल्याण से बचना चाहते हैं, तो क्या करना पड़े? तेरे भाने सर्व का भला, ये कहने वाला कौन है? तेरे किसके लिए कहा? किसने कहा? शिव बाबा ने कहा ना। शिव बाबा कहते हैं तेरे बहने सर्व का भला, तो वो तेरे कौन है? चंद्रमा जिसका रूप दिया गया है उसी के लिए कहा जाता है ना। वेदांत तो छूटे ग्रहण, सूर्य को तो ग्रहण लगने की कोई बात ही नहीं, सूर्य कोई प्रभाव में नहीं आता है, परछाई में नहीं आता है, सूर्य के ऊपर किसी का परछावा पड़ भी नहीं सकता, चंद्रमा पर ही परछाया पड़ता है, ज्ञान चंद्रमा ही प्रभाव में आता है। तो जो अकल्याण करने वाले बच्चे हैं उनको ही ये पक्का दृढ़ संकल्प लेना पड़े कि भारत माता की सुरक्षा करनी है। इस भारत माता में कोई एक कारीगर नहीं है। क्या क्या समझे बैठे हैं? एक ही कारीगर है। कारी माना काला, गल माने बात। एक ही कोई काली बात है और उसके ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली, हमने जीत लिया कारीगल का युद्ध। एक कारीगल नहीं है, सैकड़ों कारीगल भरे पड़े हैं। जो अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं, कारी माना काला और गल माना बात, ऐसी काली बात। काली बात पाकिस्तान के लिए नहीं बोला, वो काली गल कहाँ है? भारत में घुसे पड़े उनका पर्दाफाश करना। सूर्यवंशी बच्चों का काम है, जो असल सूर्यवंशी है वो अब प्रत्यक्ष होने वाले। कालेपन का नाम निशान मिटाए देंगे, दुष्ट अपनी दुष्टता कर नहीं सकेंगे। जो मुरली में भूला है ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी असुर, कोई भी विचारी दृष्टि वृत्ति कृति और वाचा वाला प्रवेश कर नहीं सकेगा। अभी तो प्रवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे अभी ये किला मजबूत होता जाता है, अंत में ऐसा मजबूत हो जाएगा कि कोई भी कौरव या कोई भी यादव या कोई भी असुर पांव नहीं रख सकेगा। तब संगठन संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा। और मीराओं को जिसे पिलाया जाता है वो खुद पीने की इच्छुक नहीं होती। और यहाँ बाबा क्या कहते हैं, मीराएं या द्रौपदियों से क्या कहते हैं, कुमारियां तुम पति तक ना बनो। इसका मतलब सिग्नल कहाँ से मिलता है, कोई न कोई तौर तरीका ऐसा होता है, वो सिग्नल मिलता है और असुरों को आसुरी बना करने का मौका मिल जाता है। बाप इसलिए समझाते हैं ऐसा कोई वातावरण भूल से भी पैदा नहीं करना चाहिए कन्याओं को, जिससे असुरों को आसुरी बना दिखाने का मौका मिले। फौरन शक्ति स्वरूप धारण करना है, जहां भी देखें कि वाइब्रेशन खराब हो रहा है वाचा तब्दील हो रही है, आसुरी कृति बदल रही है, फौरन शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये इशारे में बाबा बताया, क्या बताया, कन्याओं आप पति तक न बनो।
क्या बात है, अब बाबा कहते हैं तो जिन कुमारियों से कहते हैं